Oh.
Eccoli. Ossie, cambia.
अर्जुन शोक ग्रस्त था, भगवान ने उसको कई तर्क दिए, आत्मा के लेवल से, आत्मा के स्तर से शोक नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं बनता। जीव के लेवल से, जीव के स्तर से भगवान एक स्तर नीचे उतर गए कि अगर तुम मानते हो जीव मरता है, जीव जन्म लेता है, बोले जीव के स्तर से भी शोक नहीं बनता क्योंकि जीव की यात्रा चलती रहती है, ये शरीर छोड़ेगा दूसरा लेगा, तो इस तरीके से भी शोक का कारण नहीं बनता अर्जुन। तीसरा फिर उन्होंने कहा एक स्तर और नीचे आ जाते हैं, बोले शरीर को अगर तुम मानते हो आत्मा फिर भी शोक नहीं बनता है, क्यों शोक नहीं बनता शरीर के लेवल पर भी, तो बोलते शरीर व्यक्त होता है अव्यक्त होता है, अव्यक्त दशा में ज्यादा दिन रहता है, व्यक्त दशा में कम दिन रहता है, फिर भी शोक का कारण नहीं है। बोला जीव अपने घर जा रहा है, पंच महाभूत से बना है, कुछ देर के लिए 100 साल के लिए वो पैदा हुआ, फिर पंच महाभूत में चला गया, फिर अव्यक्त दशा बोले बहुत दिन तक रहती है, तो बोले ये तो घर जा रहा है अपने, वहां घर ज्यादा नहीं रहेगा, तो इसमें फिर सोचने क्या बात है। अर्जुन तुम ठीक से विचार नहीं कर रहे हो, अगर विचार नहीं कर पा रहे हो तो हम जैसा कहते हैं वैसे विचार करो, तुम अगर विचार उस तरीके से करोगे तो तुम समझ जाओगे कि शोक का कारण आत्मा की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से नहीं बनता है। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि यह शोक अनौचित्य उपनिषद है, शोक अनौचित्य, उचित मतलब शोक उचित है, अनुचित है, बोले अनौचित्य उपनिषद है। भगवान जो ये उपनिषद कह रहे हैं, ये ज्ञान जो दे रहे हैं, वो आपको ये प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रमाण करना चाहते हैं कि शोक का कारण बनता नहीं है, मगर अर्जुन के समझ में नहीं आता है, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। तो भगवान कहते हैं देखो ये दुर्भिज्ञ विषय है, दुर्भिज्ञ ज्ञ जानना, विज्ञ विशेष रूप से जानना, दुर्भिज्ञ नहीं जानना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, दुर्भिज्ञ है ये, क्यों दुर्भिज्ञ है। देखो इसके अंदर बोलते हैं कि एक आपका कारण है कि आप अटैच्ड हो अनात्मा से, एक कारण तो ये है। क्यों दुर्भिक्ष है? क्योंकि आप अटैच हो अनात्मा, आत्मा अनात्मा से भिन्न है, दो ही चीजें हैं। अनात्मा क्या है? आत्मा को छोड़ के बाकी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, वो सबका सब अनात्मा है। तो बोले आप अनात्मा से संबंध जोड़ के बैठे हो, आत्मा से संबंध विच्छेद करके बैठे हो। एक तो ये कारण है आपका शोक का। जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा है, उसको संबंध तोड़ के बैठे हो, और संबंध किससे जोड़ा है आपने? अनात्मा से। अनात्मा वो वस्तु है जो कि बदलती रहती है और नष्ट होने वाली है, और जो चीज नष्ट होने वाली है वो आपको सुख नहीं देती, क्या देती है? दुख देती। बहुत बढ़िया। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण बोलते हैं आपकी आदत बन गई है। आदत बन गई है मतलब आप अनात्मा में इतना रमन करते हो कि आपका सवेरे उठते ही आप जो है अनात्मा में विचरण करना शुरू कर देते हो। आदत सी बन गई है, बराबर उसी तरफ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कभी भीतर जाने का प्रयास भी नहीं करते हो। सवेरे से उठे, जैसे ही आंख खुली, खाली बाहर देख रहे हैं। एक्स्ट्रोवर्ट, अंदर जाते ही नहीं है। तीसरा आपका शोक का कारण है अज्ञान है। किस चीज का अज्ञान है? हमको तो अनात्म वस्तुओं का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है क्या? आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये आपका अज्ञान है। अज्ञान के कारण जो है हम अनात्म वस्तुओं में विचरण करते हैं। चौथा कारण बोलते हैं गलत फहमी लगी है आपको। गलत फहमी मतलब मोह। क्या गलत फहमी है? गलत फहमी ये है कि जो जगत दिखाई पड़ता है ये सत्य है, ये रहेगा, ये ऐसा ही बना रहेगा, हमारा शरीर हरदम जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा, हमारा घर कभी टूटेगा नहीं। बोले ये जो आपने समझ बना के रखी है कि ये सारी चीजें सत्य हैं, ऐसी बनी रहेंगी, बोले ये कभी नहीं होगा। इन चार चीजों के कारण आप जो है शोक में लगे रहते हो, बराबर शोक आपको रहता है, और इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। संबंध को छोड़ना, आदत को छोड़ना, गलत फहमी को छोड़ना, और अज्ञान। अज्ञान बिना ज्ञान के होगा नहीं, तो इस बहुत मुश्किल है। दुर्भिज्ञ इसीलिए है, और शास्त्र समझ में नहीं आता। कई लोग बोलते हैं तो बड़ा सूखा विषय है, हमको समझ में नहीं आता है, ड्राई है। बढ़िया। भगवान ने अर्जुन को एक समय डांटा भी था, शुरू शुरू में जब वो रो रहा था तो उसको डांटा, उसको कहा तुम नपुंसक हो, तुम हिंजड़ा हो, ऐसा कह दिया था। वही भगवान अब कहते हैं आत्मा के बारे में, अर्जुन ये आत्मा दुर्भिज्ञ है। कैसे दुर्भिज्ञ है? यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं जिसका प्रकरण चल रहा है ये आत्म तत्व दुर्भिज्ञ है, इसको समझना कठिन है। सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाले विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाना दूं? सर्वसाधारण जितने लोग हैं सारे के सारे मोहित हैं, अब हम तुमको अकेले क्या कहें, तुमको क्या उलाना दें? कहते हैं ये आत्मा दुर्भिज्ञ कैसे है, सो कहते हैं। तो दरबार, ये जो आत्मा दुर्भिज्ञ क्यों है इसके बारे में भगवान कह रहे हैं। अच्छा, बीच में देखो, आपको अगर हम फिर से याद दिला दें, भगवान ने आत्मा से शुरू किया था 11वें श्लोक से, फिर बीच में आके उन्होंने जीव को पकड़ लिया, फिर शरीर को पकड़ लिया, अब फिर से वो आत्मा पर आ रहे हैं। थोड़ा सा डाइवर्सन हुआ, जीव लेवल, उसके बाद में शरीर लेवल, उसके बाद में अब फिर आत्मा के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, क्या कैसे दुर्भिग्य है तो भगवान बताते हैं।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्,
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्,
आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः,
आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः,
आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति,
आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति,
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्,
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, एनम मतलब इस आत्मा को। कुछ लोग आश्चर्यवत इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, मानो कोई आश्चर्य ही है, आत्मा ही आश्चर्य है। पश्यति कुछ लोग देखते हैं, ये पश्यति का क्या मतलब है बाद में देखेंगे, कुछ लोग देखते हैं ये आश्चर्य है। आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य, बदति कुछ लोग इसके बारे में आत्मा के बारे में बोलते हैं, आश्चर्य वो भी बोलना भी आश्चर्य, आश्चर्य। आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, बोलते हैं जो साधना के बारे में सुनते हैं वो भी आश्चर्य है। श्रुत्वा अपि एवं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, बोले कुछ सुनने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आता, बोले ये भी आश्चर्य है। बोला आत्मा इट्सेल्फ आश्चर्य, कुछ दो देखते हैं बोला अरे ये तो आश्चर्य है, जब दिखाई पड़ता बोला ये तो आश्चर्य है, और कुछ जब आत्मा के बारे में बोलते हैं तो बोले ये भी आश्चर्य है। जो उसके बारे में सुनते हैं, जो समझ पाते हैं, बोले ये भी आश्चर्य है। आपने अगर आत्मा के बारे में समझ लिया बोले आश्चर्य है, और सुनने के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आया ये भी आश्चर्य है। बहुत अच्छा। तो आश्चर्य किसको कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं पहले जो नहीं देखा गया हो, अकस्मात दृष्टि गोचर हुआ हो, ऐसी अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है, और उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत है। इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्य में वस्तु की भांति देखता है, कोई महात्मा उसको देख पाता है। कैसे आश्चर्य? आप मान लो कहीं जा रहे हो घूमने के लिए। एक बार हम लोग जो है कलकत्ते से बिहार घूमने जा रहे थे, तो किसी ने कहा, बहुत बार सुना है आप लोगों ने भी ये नाम सुना होगा, झुमरी तलैया, सुना ना? हाँ, झुमरी तलैया। तो हम लोग बिहार में घुसे, घुसने के बाद में फिर एक जगह पर माउंटेनियस रीजन था, पहाड़ों के पीछे गए, हटात जैसे घूमे झुमरी तलैया दिखाई पड़ी। तो मुलारी ये तो सब सूखी जगह थी, ये पहाड़ था, यहां कहां से तलाव आ गया झुमरी तलैया? आश्चर्य होता है। देखो बुद्धि से जो तर्क में समझ ना आए ना, तब हम उसको कहते हैं आश्चर्य। तर्क से समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कैसे हो रहा है, बुद्धि में फिट नहीं हो रहा है। लोग समझाते हैं मगर समझ में नहीं आया, मगर जान लिया, जानने के बाद में आश्चर्य नहीं है। जब आश्चर्य होता है तब क्या कहते हैं, आप उसके में मक्खी जाए, आश्चर्य, आश्चर्य। देखो आज से 2-3 साल पहले ना, एक बार भारत में क्या हुआ था, सब जगह से बहुत ब्रेकिंग न्यूज, क्या भगवान ब्रेकिंग न्यूज है, भगवान गणेश जो है दूध पी रहे हैं, वो कैपिलरी इंपैक्ट हो रहा था। अब वो जहां जहां जिस चीज भगवान को दूध दे, दूध गायब, ऐसा तो कभी देखा नहीं था। बोले आश्चर्य, सब लोग आश्चर्य हो गए. उसके बाद फिर लोगों ने बताया कि इसके अंदर ये प्रक्रिया है, इसके कारण ये हो रहा है. साइंटिफिक प्रक्रिया उन्होंने बताई. मान लो आपका पुत्र है गणेश, उस गणेश जो है उनको जो है दूध एकदम पसंद नहीं है, ही हेट्स, घृणा करता है. एक दिन अगर मांगे दूध दो माँ हम दूध पियेंगे, आप नहीं कहोगे आश्चर्य है ये दूध मांग रहा है, तो घृणा करता है था दूध मांग रहा, आश्चर्य है. बच्चों को हम दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, आप लोग तो पकड़ लोगे, देखो छोटी उंगली बाएं तरफ में है मैजिक, छोटी उंगली दाहिने तरफ चली गई, आश्चर्य कैसे हुआ ये, छोटी उंगली लेफ्ट में थी, अभी देखो मैजिक लगाया, एक मंत्र पढ़ दिया, छोटी उंगली राइट हो गई. बच्चे आश्चर्य करते हैं. कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा देखो आश्चर्य करते हैं, पांच उंगली और पांच उंगली कितनी होती है, दस. देखो आश्चर्य बनाते हैं, अभी आपको ग्यारह बनाते हैं इसको. आश्चर्य कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ठीक है ना, गिनती ठीक है, ठीक है. अच्छा उल्टा गिनो अब, दस नौ आठ सात छ प्लस पांच हुआ ना ग्यारह, ग्यारह बना दिया, वेरी गुड. आश्चर्य देखो, जब पहले पहले जब रेडियो आया था ना तो बड़े बड़े होते थे, ग्राम के लोग जब सुनते थे रेडियो तो बोलते थे लता मंगेशकर कैसे इसमें घुस गई, लता मंगेशकर का गाना कैसे घुस गई, आश्चर्य बहुत अच्छा. पहले जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब कोई ग्रामीण आता था हमने स्विच जलाया, बत्ती जल गई, लाइट हो गई, आश्चर्य था. हम 1985 में आए थे, उस टाइम हमको यही पता था कि भई अगर आपको बात करनी है तो वो टेलीफोन से करनी होगी जिसके साथ में एक तार लगी रहती है, और उसको आप लेके लंबी तार हो तो इस सोफे से उस सोफे तक ले जा सकते हो. मुझे याद नहीं है, मैंने कनाडा में देखा कि अमेरिका में देखा, किसी साइंस म्यूजियम में हमको वो ले गए, ले जाके हमको दिखाया कि अब जो है एक हम लोग मोबाइल फोन बनाने वाले हैं जिसके अंदर आपको तार नहीं लगेगी, और वो कैसे काम करता है. एक अंधेरे घर में ले जाके उन्होंने हमको दिखाया कि रेज जा रही हैं, लाल लाल रेज जा रही हैं, और एक साथ में 50, 60, 100, 1000 रेज जा रही हैं, आ रही हैं. बोले एक एक रेज एक एक आदमी को दे देंगे, उसके हिसाब से उसका वो चलता रहेगा. अब वो तो नजर में आता नहीं है. जब मोबाइल फोन आया तो हम लोग आश्चर्य नहीं हुआ था, आश्चर्य बिना तार के हम लोग बात कर रहे हैं. अब तो ऐसा हो गया है कि उस मोबाइल फोन के अंदर पता नहीं क्या क्या कर लेते हो आप. अब देखो ये मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर इस मोबाइल से आप फोटो भी उतार लेते हो, बात भी कर लेते हो, ईमेल भी भेज देते हो. एक आश्चर्य सवेरे हुआ, गुरुजी मिनियापोलिस आए हुए थे, कुछ फोटोज थी हमारे पास में, इनकी मदर दुर्गापुर में बैठी हैं, तो उनको फोन पर बताया कि गुरुजी आए थे, कुछ फोटो वगैरह हैं, तो हम कैसे देखेंगे. बोला भेज देते हैं, तो कैसे इतनी जल्दी आएगी. अब उनका सेट देखो माइंड कहाँ है, फोटो हम बनवाएंगे, उसका हार्ड कॉपी बनाएंगे, यहाँ से लिफाफे में डालेंगे, इंडिया जाएगी, वहाँ पहुँचेगी, तब वो देखेंगे. अब बोला भेजते हैं, तो उसको व्हाट्सएप पे भेजे, उन्होंने देख लिया, अरे तो बहुत सुंदर, आश्चर्य. हमारे वहां एक पड़ोसी हैं नॉर्थ में, उनका क्या नाम है, माइक नाम है उनका, तो माइक के बच्चे कभी कभी इधर आ जाते हैं, इधर आके जो हम लोग का ड्राइववे है ना घुसने से लेके उस वहां तक, वो बीच में खड़े होके, उनके पास में कोई इलेक्ट्रिक कार है, रिमोट कंट्रोल है. अब उसको इतनी लंबी जगह मिलती नहीं है सब सीधी, तो बच्चे कभी कभी आके खेलते हैं. अच्छा वो सूं करके जाती, पता नहीं 50 माइल स्पीड में है लिखित, और वो जाके लेटर बॉक्स से पढ़ते फट बंद, फिर वो टर्न, फिर इधर अच्छा, फिर वो फिर गैरेज के वो डिफरेंट आइल्स हैं उसके अंदर घुमा देता है एक जगह खड़े होके रिमोट कंट्रोल। आपको लगता है भी आश्चर्य नहीं, उस जमाने में एक ऐसी गाड़ी आ जाएगी कि आप बोलोगे जाओ कॉस्को से ये खरीद के लाओ गाड़ी चली जाएगी आश्चर्य। तो जब समझ में नहीं आता है तो आश्चर्य, आत्मा के बारे में क्या आश्चर्य है? जब आत्मा को आश्चर्य आश्चर्य कर रहे हो तो आत्मा के बारे में क्या आश्चर्य है? आत्मा के बारे में ये आश्चर्य है कि सब जगह है मगर नजर नहीं आता है, ये आश्चर्य है। सब जगह है आत्मा मगर नजर में नहीं आता, इसको आश्चर्य कहते हैं। ईसावासी उपनिषद में कहा तद एजति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके, तद एजति, एजति मतलब वह हिलता है, आत्मा हिलता है, दूसरे वर्ड में कह दिया तद अन्य जति, हिलता नहीं है। उपनिषद कह रहा है, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, अगर आप खुद पढ़ोगे तो आप बोलोगे पागल थे लोग, जो लोग आत्मा के बारे में ऐसे लिखते हैं, कभी बोलते हैं हिलता है, कभी बोलते हैं हिलता नहीं है, क्या बोलना चाहते हो, बोलो ठीक से बोलो, नहीं मालूम है हमें कुछ नहीं। फिर कहते हैं तद दूरे तद अंतिके, बोलो दूर में भी है नजदीक में भी है। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि इस सारे स्पेस के अंदर में आत्मा ठसा ठस भरा हुआ है, उसको हिलने की जगह नहीं है। जैसे इस गिलास के अंदर पूरा पानी भर दो और एक बूंद डालने की जगह नहीं है, वैसे ही आत्म तत्व बोलते हैं इस सारे जगह पर ठसा ठस भरा, हिलने की जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा यहां है वहां नहीं है, वहां चला जाएगा आत्मा, ऐसा नहीं होता है, एकदम ठसा ठस भरा हुआ है। फिर कठोपनिषद में कहते हैं आसीनो दूरम ब्रजति शयानो याति सर्वतः, आसीनो बैठा हुआ दूर चला जाता है, आदमी बैठा हुआ कभी दूर जाता है क्या? बोला आत्मा बैठा हुआ दूर चला जाता है। और शयानो याति सर्वतः, और सोया हुआ सब जगह है, आदमी सोया होता तो एक ही जगह होता है ना, आत्मा तो सब जगह है, यह आश्चर्य है आत्मा के बारे में। तो वो आत्मा है कैसा भाई? तो कहते हैं अशब्द अस्पर्श अरूप अरस अगंध है। देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमको मालूम है, शब्द कान से सुनते हैं, स्पर्श रूप रस गंध, बोलते ये पांच चीजें तो आत्मा नहीं है, इसलिए कहते हैं अशब्द अस्पर्श अरूप अरस अगंध, आत्मा वो चीज है। बहुत अच्छा, और वो तत्व क्या है? बोले सब विश्व का आधार है, जो अशब्द अस्पर्श अरूप अरस गंध है, बोले वो सारे विश्व का आधार है, वही सत्य है, वही मेरी आत्मा है। बहुत अच्छा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत किसको कहते हैं? वत मतलब लाइक, जैसा, आश्चर्य के जैसा है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि अब जैसे हमारे गुरुजी को हम लोग कहते हैं बालवत, ही तो बालक, वो बालक नहीं है मगर बालक जैसे हैं। तो आत्मा क्या है? आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह है। दूसरा मीनिंग ऑफ आश्चर्यवत कहते हैं कि जिसके अंदर आश्चर्य भरा हो, जैसे धनवत, धनवत जिसको कहते हैं, जो धनवान है उसको धनवत कहते हैं। धनवान कौन है? जिसके पास में धन है। तो आश्चर्यवत मतलब आत्मा के पास में आश्चर्य ही आश्चर्य है। तो आश्चर्यवत का एक मतलब हुआ जैसे आश्चर्य, दूसरा मतलब हुआ आश्चर्यवत मतलब उसमें आश्चर्य ही आश्चर्य है। पश्यति, पश्यति मतलब जानाती, हम जानते हैं उसको, कैसे जानते हैं? देखो हम किसी वस्तु को अगर जानना चाहें, इस किताब को जानना चाहें, इस पेपर को जानना चाहें, तो हमें क्या क्या लगेगा? जो सुन नहीं रहे हैं, जो देख नहीं रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। एक तो आपको ज्ञान इंद्रियां चाहिए और दूसरा मन चाहिए। दोनों चीजें चाहिए तब आपको ये दिखाई पड़ेगा। मगर आत्मा, दोनों बंद करना पड़ेगा तब आत्मा दिखाई पड़ेगा। देखो है ना आश्चर्य, दुनिया की किसी भी चीज को देखने के लिए आपको ज्ञानेंद्रियां और मन दोनों ही चाहिए। आप इससे सहमत हो? मगर आत्मा को देखने के लिए ज्ञानेंद्रियों को बंद करना होगा, मन को बंद करना होगा, तब आत्मा को आप देख पाओगे। हम कहते हैं जान पश्यति, कहते हैं जान पाओगे, अनुभव कर पाओगे। है ना आश्चर्य की नहीं? मान लो आपने ज्ञानेंद्रियां और मन को बंद करके आपने उसको जान लिया, अनुभव कर लिया। अनुभव करके आप आके हमको बोले मैंने देख लिया, मैंने जान लिया। जैसे ही आपने ये कहा, हमारा केनो उपनिषद कहता है यदि मन से सुबह देती मैंने अच्छी तरह से जान लिया, तो बोले तुम कुछ नहीं जानते हो। और यदि कहो मैंने नहीं जाना, तब जानते हो। मतलब ये, अगर आप कहो कि हम जान लिए ज्ञानी हैं, आप नहीं जानते। और अगर आप कहो हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते, तब जानते हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर आप ये जानो कि मैंने आत्मा को इस तरह से जान लिया, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया आत्मा को, हमने ज्ञान इंद्रियों से और मन से इसको पकड़ लिया, तो आपने नहीं जाना। आप कभी भी आत्मा को विषय नहीं बना सकते। आपकी पांच ज्ञान इंद्रियों का और मन का विषय वो कभी नहीं बनेगा। जैसे ही आपने कहा मैंने जान लिया, तो आप अगर वस्तु के रूप में जानते हो, तब आपकी जानकारी गलत है। तो आत्मा के ज्ञान का तरीका भी देखो आश्चर्य रहता है ना, अद्भुत है। ज्ञान इंद्रियों को बंद करो, मन को बंद करो, तब होगा। क्यों? क्योंकि वो अचिंत्य है। अच्छा, अचिंत्य का मतलब ये नहीं होता कि उसका चिंतन नहीं करो। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा है कि उसका चिंतन वृत्ति के रूप में नहीं करो। वो आत्मा कभी वृत्ति नहीं बनेगा, वो वृत्ति का प्रकाशक है। वो वृत्ति का कभी भी रूप में नहीं आएगा। बहुत अच्छा। उससे सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि वो आत्मा की अनुभूति मैं के रूप में होती है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो आत्मा मैं हूं, उसका अनुभव ऐसे होता है। हमारे अजय कुमार की स्टोरी में आ जाए। अजय कुमार की स्टोरी मालूम है? कितनों को मालूम है? 1, 2, 3, 4। आप अजय कुमार की स्टोरी मालूम है आप लोग को? देखो, एक अजय कुमार थे, तो एक उनके मित्र थे। उनके मित्र से पूछा, आप अजय कुमार को जानते हो? हाँ जानते हो, तो मेरा लंगोटिया यार है। हम लोग जब दोनों आदमी जब लंगोट पहनते थे, तब से हम उनको जानते हैं, सब जानते हैं। इतना पढ़ा है, उसके बाद इसकी ऐसी शादी हुई, ये हुआ हुआ, अब उसके बच्चे हैं, वो यहाँ है वहाँ है, सब ठीक है। उनकी धर्मपत्नी, अजय कुमार की धर्मपत्नी से पूछा कि आप अजय कुमार को जानते हो? बोला, अरे क्या बात करते हो, उनको मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा अजय कुमार को। बहुत अच्छा। उसके बाद में अजय कुमार के डॉक्टर के पास में गए, आप अजय कुमार के जानते हो? बोला हाँ, उसकी हड्डी तक जानते हैं, उसकी एक्सरे देखी है मैंने, तो भीतर तक जानते हैं उसको। फिर और उनके दोस्तों से पूछा कि हाँ जानते हैं, कोई कहता है मैं 2 साल तक उनके साथ था अजय कुमार के साथ में, कोई 5 साल का अनुभव बताता है, कोई 10 साल का बनाता है, पत्नी 25 साल 50 साल का बताती है। अजय कुमार से पूछिए, आप अजय कुमार को जानते हो? क्या बोलेगा अजय कुमार? क्या अजय कुमार ये बोल पाएगा कि मैं अजय कुमार को 10% जानता हूं, 20% जानता हूं, 50% जानता हूं कि 100% जानता हूं? वो कहेगा मैं अजय कुमार हूं। आप पूछोगे अजय कुमार को जानते? मैं अजय कुमार हूं। उसी तरह से ब्रह्मा, आप ब्रह्म को जानते हो? जिस दिन आप ये उत्तर दोगे कि मैं ब्रह्म हूं, तब वो आपका सही अनुभव होगा। तो ब्रह्म को आप कैसे
है?
तो ब्रह्म का अनुभव ऐसे होगा। तो ऐसे जानने वाले महात्मा दुर्लभ है, सह महात्मा दुर्लभ, बहुत कम लोग हैं ऐसे महात्मा जो उनको जानते हैं कि वो खुद ही वही ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोले नित्य है, निर्विकार है, अच्छेद्य है। हम लोगों ने सब देखा है ना, अदाह्य है, अशोष्य है, सब ये देखा था। और कैसे जाना जाता है वो? आश्चर्य प्रसति अचक्षु, बिना आंख खोले जाना जाता है, अश्रुति बिना सुने वो सुना जाता है। ये उसका आश्चर्य पश्यति, पहली लाइन हुई आश्चर्यवत पश्यति एनम, कोई देख रहा है। दूसरा आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, जो उसके बारे में बोलता है। देखो अतीन्द्रिय विषय है, ज्ञान इंद्रियों से नहीं पकड़ने वाला है, मन से भी नहीं पकड़ने वाला है। उस आत्म तत्व के बारे में जो बोलता है वो भी आश्चर्य है कि नहीं? वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ती है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, आप उसके बारे में कुछ निर्वचन नहीं करते हो, मगर जो है वक्ता बोलता जाता है, उसके बारे में सब बताता जाता है, क्या वो आश्चर्य नहीं है? देखो बोलने वाला भी आश्चर्य है, अगर नहीं बताता तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाती, रहती नहीं। अगर गुरु शिष्य परंपरा चालू है तो इसका मतलब जो है वक्ता जो बोलता है वो भी उस वस्तु के बारे में आश्चर्य है बता रहा है। अच्छा आत्मा तो आश्चर्य आश्चर्य है, सब जगह है, सब जगह है। महात्मा लोग कहते हैं गुरु महाआश्चर्य है, गुरु महाआश्चर्य है। क्यों? बोले आत्मा तो सर्वत्र है, गुरु सर्वत्र है, बताओ। अगर आत्मा आश्चर्य है और वो आत्मा सर्वत्र है, गुरु को जो है महात्मा लोग कहते हैं महाआश्चर्य है। सब जगह तो नहीं गुरु, कौन बताएगा आत्मा के बारे में? गुरु बताएगा। मगर गुरु कितने हैं? बहुत कम है। गुरु शिष्य परंपरा में पढ़े लोग हैं वही बता पाएंगे, और तो नहीं बता पाएंगे आपको। बोलो वो भी आश्चर्य है। कौन है वो गुरु? बोले श्रोत्रिय एंड ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय जिसने सारे शास्त्र पढ़े हों, ब्रह्मनिष्ठ जो उसके अंदर में बैठा हो, और वो आपको हस्तांतरित कर पाए, आपको शब्दों के द्वारा आपको आत्मा का ज्ञान करा पाए, वो है गुरु। अच्छा भाई आत्मा कैसा है? अब प्रश्न उठता है आत्मा कैसा है बताओ। तो यहां पर कठोपनिषद में कहते हैं अनोरणीयाम महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः। अनोरणीया बोले छोटा से अनु, अनु से छोटा, छोटे से छोटा है, और मातो महियान बड़ा से बड़ा है। देखो निर्वचन आत्मा के बारे में करना बहुत मुश्किल है, मगर आपको समझाना है। आप बोलोगे अरे एक बात करो ना, छोटा से छोटा बोलो नहीं तो बड़ा से बड़ा बोलो, क्यों ऐसा विरोधी भास करते हो? कभी बोलते छोटा से छोटा है, छोटा से छोटा है, फिर बोलते बड़ा से बड़ा है, बड़ा से बड़ा, ये क्या बात है? इसके पीछे एक राज है, हम आपको बताएंगे बाद में। आत्मा से जंतु निहतो गुहायाम, और ये आत्मा कहां है? बोले हर जंतु के हृदय के अंदर में उपस्थित है, ऑल बींग्स के भीतर में यह आत्म तत्व है। तम अकर्तु पश्यन्ति बीत शोको धातु प्रसाद महिमानम आत्मना, इस आत्मा की ग्लोरी महिमा आप जान सकते हो कब? अकर्तु, अकर्तु मीन्स जिस दिन आप डिजायर लेस हो जाओगे। अकर्तु का मतलब डिजायर लेस हो जाओगे, डिजायर लेस का मतलब वासना लेस हो जाओगे। जिस दिन वासना खत्म हो जाएगी उस दिन आप उसको देख पाओगे। धातु प्रसादात, धातु प्रसाद, धातु मीन्स सेंसेस, प्रसाद मीन्स प्योरिफाइड। जब आपके सेंस ऑर्गन्स प्योरिफाइड हो जाएंगे, जब आपका मन प्योरिफाइड हो जाएगा तब आप उसको देख पाओगे, और जब देख लोगे तो क्या होगा फिर? बीत शोको, शोक खत्म हो गया आपका, बीत शोक, शोक चला गया। सत प्रतिशत जाता है, सत प्रतिशत जाता है। लिटमस टेस्ट क्या है? बोले जब तक आपको शोक का अनुभव होता है तब तक आप अज्ञानी हो। जब तक आपको शोक का अनुभव होता रहता है तब तक आप, और जब शोक का अनुभव नहीं होता है, शोक होते हुए भी शोक का अनुभव नहीं होता है तब? ठाकुर रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर था, जब वो समाधि में रहते थे, समाधि में रहने का मतलब आपके शरीर से कोई लगाव नहीं है, तब तक शांत। जैसे ही समाधि टूटी, शरीर के साथ लगा हुआ, दुख शुरू। फिर कहते थे कि अच्छा क्या आइसक्रीम खाने से ठीक होगा? थोड़ा ठंडा, वो ही सोचते थे शायद आइसक्रीम थोड़ा ठंडा खाएंगे तो शायद ठीक हो। क्या ये करने से ठीक होगा? वो ठीक करने से होगा। फिर समाधि में गए, गए, कोई दुख दर्द नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, विरोधी शब्द इस वास्ते दिए जाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट नहीं कर लो। जो सर्वत्र है, जो सब जगह है, जो इनफाइनाइट है, उसका वर्णन हम कैसे करें? हम उसका वर्णन इसी तरह से कर सकते हैं कि वो छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा है। आप उसको छोटा से छोटा का भी कॉन्सेप्ट न बनाओ और वो बड़ा से बड़ा है ऐसा भी कॉन्सेप्ट न बनाओ। इस वास्ते जो है विरोधाभास जो है शब्द व्यवहार किए जाते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में अगर इतने ग्रंथ लिखे गए हैं तो क्या वो आश्चर्य नहीं है? इतने ग्रंथ लिख दिए गए, वो भी आश्चर्य है।
इतने उपनिषद।
अच्छा, आश्चर्यवत् च एनम् अन्य श्रुणोति, बोले जो सुनते हैं वो भी आश्चर्य है। क्यों भाई, ये आश्चर्य कैसे हो गया? जो सुनने के लिए आता है ना वो भी आश्चर्य है। सारी दुनिया के लोग ज्ञान के इच्छुक नहीं है। किसके इच्छुक है? कामनी, कांचन और कीर्ति। कामनी, कांचन, कीर्ति। कामनी सेंसुअल प्लेजर्स, वो खत्म हुआ, उसके बाद में कांचन, सोना, पैसा चाहिए, पैसा। देखो पहले हम लोगों ने शादी की कि नहीं? कामिनी आ गई। कामिनी आने के बाद कांचन चाहिए, घर कैसे चलेगा? कांचन आना शुरू हुआ। कांचन जब पूरा हो जाता है, बहुत हो जाता है, फिर कीर्ति चाहिए, मेरा नाम पेपर में आना चाहिए, कीर्ति, कामनी कांचन कीर्ति। जो सुनने के लिए आए हैं वो कामनी कांचन कीर्ति को बाहर रख के आए हैं, आश्चर्य नहीं है? और जो नहीं आ पाए हैं वो कामनी कांचन और कीर्ति में फंसे हुए हैं। इसलिए जो सुनने आए हैं वो भी आश्चर्य है कि लोग तो वहां फंसे हुए हैं, अनात्म वस्तु में फंसे हुए हैं, अब देखो ना आप सब छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो, आश्चर्य है, ये भी आश्चर्य है। गुरु के पास में कौन जाता है? साधन चतुष्टय संपन्न, जिसके पास विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्वम है, ऐसे लोग गुरु के पास में जाते हैं कि हमको ज्ञान दिया जाए। और इस ज्ञान के लिए ठाकुर रामकृष्ण तो रोते थे, दक्षिणेश्वर के अपने उस मकान के ऊपर में खड़े होके शाम को 4 बजे रोते थे, अरे तुम लोग सब इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो जब ठाकुर रामकृष्ण जब कलकत्ते में घूमते थे ना तो बोलते थे देखो हमने किसी भी आदमी की दृष्टि ऊपर नहीं देखी है, सब नीचे देखते हैं, खाली सबको लगता है पेट की खाली पड़ी हुई है, किसी की दृष्टि भी है ऊपर नहीं नजर आती है। और वो रोते थे, बोला आओ, अरे तुम लोग दुखी हो, तुम लोग इधर आओ ना, ये ज्ञान लो सुखी हो जाओगे, कोई नहीं आता था। आश्चर्य, देखो सब कुछ आश्चर्य है, आत्मा आश्चर्य, वक्ता आश्चर्य, श्रोता आश्चर्य। अच्छा सुनकर जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है वो भी आश्चर्य है, वो जब रियलाइज कर जाता है तब बोलता है आश्चर्य, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को आत्मज्ञान हो जाएगा। अब चौथी लाइन में आते हैं, श्रुत्वापि येन वेद न चैव कश्चित्, कुछ सुनकर जान लेते हैं और बहुत बोलते हैं नहीं हमको तो समझ में नहीं आया, बोले ये भी आश्चर्य है। इतना बताने के बाद कुछ बोलते हैं कि नहीं समझ में आया, अरे वह आत्मा आप हो, आपसे दूर नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आ। विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास में आत्मज्ञान के लिए गए, तो विरोचन ने एक लेक्चर के बाद में आ गया, बोला आत्मा क्या है? बोला शरीर आत्मा है। वापस इंद्र 100 साल तक वहां थे, ब्रह्मा जी से ज्ञान लेके आए कि आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, शरीर से अलग जो चीज है वो है आत्मा। जड़ भरत को 3रे जन्म में जाके आत्मज्ञान हुआ, पहले जन्म के अंदर बहुत दूर तक पहुंच चुके थे, फिर आप लोगों को मालूम है कि एक मृग शावक आ गया, अब उनकी साधना खत्म हो गई, अब उसको उसके पीछे लग गए, उसको दूध पिलाएं ये करें, अब वो जंगल में जाए, अब ये यहाँ बैठ के सोचे कहाँ गया, वापस नहीं आया। और वो जब तक आके अपने सिंह से उनकी पीठ नहीं खुजलाता था उनको आनंद नहीं आता था, ऐसा करते करते वो उनकी मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में वो मृग बने। फिर मृग के रूप में भी उनको पता लगा कि अरे ये क्या मैंने कर दिया, मेरे तो वहां इतना आत्मज्ञान की साधना में कर रहा था, ये कहां फंस गया मैं आके। फिर वो जड़ भरत के रूप में आ गए 3रे जन्म में, वहां जाके फिर उनको पता लगा कि आत्मतत्व क्या है। वामदेव पिछले जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, मगर उसके अगले जन्म में गर्भ में रहते हुए आत्मज्ञान मिल गया। देखो गर्भ में भी ज्ञान होता है, आत्मज्ञान हो गया, गर्भ में रहते रहते भी ज्ञान हो जाता है। रोज सुसुप्ति में आप सबको अहम का ज्ञान होता है, मगर फिर भी आप कहते हो हम उसको आत्मा को जानते नहीं है, क्या आश्चर्य नहीं है ये? रोज सुसुप्ति में आप सबको अहम का ज्ञान होता है, शुद्ध अहम के पास में आप होते हो, फिर भी आप कहते हो किसी ने आपको नहीं कहा आज तक कि ये देह आत्मा है, मगर इसको आप छोड़ते नहीं हो। और गुरु और आचार्य आपको 50 बार बोलते हो आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप मानते नहीं हो, ये भी आश्चर्य है।
आश्चर्य।
देखो कोई अगर आदमी आपको कह दे या किसी को कह दे कि आप मूर्ख हो तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है और रिएक्ट करता है, गुस्सा होता है उसके ऊपर। नहीं, आप गुरु 50 बार बोलता है आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो। देखो आश्चर्य। देखो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, मन और बुद्धि से पकड़ में आने वाला नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। आश्चर्य होता है जब हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा पीसा को देखते हैं कि 45 डिग्री की 50 डिग्री एंगल में कि 60 डिग्री एंगल में वो है, हमको आश्चर्य होता है। उसके नीचे जाने में डर लगता है कि ये अभी गिरा और उन्होंने सब रेलिंग लगा के रखी है चारों तरफ, लोग उसके नजदीक तक नहीं जाए, दूर से देखो उसको। ताजमहल आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य? कभी आपने ऐसा कब्र देखा है? हम तो यहां पर अमेरिका में भी बहुत कब्रिस्तान के पास से जाते आते रहते हैं, कब्र बहुत कब्रें लाइन के बाद लाइन कब्रें लगी, छोटी बड़ी मोटी है, डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर सिलाई लगी हुई है, कब्र ग्रेव। मगर वैसा ग्रेव आपने कभी देखा है? मुमताज और शाहजहां का ग्रेव, कब्र तो है, आप नीचे जाओ वहां कब्र है, बेमिसाल है उसका, है कोई और जोड़ा कोई है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो श्रोता भी आश्चर्य जो जगत को छोड़कर आया। देखो वेदांत कोर्स के अंदर जब हम लोग आता है ना, वेदांत कोर्स सारी दुनिया में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, आओ आओ, सौ लोग आते हैं सारी दुनिया से, उसमें से फिर कुछ चले जाते हैं। अभी 70-75 हैं, 100 में से 70-75 हैं, ये कोर्स बहुत अच्छा जा रहा है। अब उनसे जाके पूछो भाई आप क्यों आए हो, क्या करते थे? बोले मैं जॉब करता था, छोड़ के आ गया। गुरुजी कहते हैं ये भी आश्चर्य है कि सारी दुनिया में 100 लोग आके सुन रहे हैं, ये भी आश्चर्य है। ऑन ए क्वेस्ट मूवी के अंदर जिस लड़के ने गुरुदेव का रोल किया है, उस लड़के का नाम संदीप है, हमारे साथ कोर्स में था। वो लड़का जर्मनी के अंदर में वो इंजीनियर था। कोर्स शुरू होने के 15 दिन पहले उसने देखा कि चिन्मय मिशन के अंदर में वेदांत कोर्स होने वाला है। उसके पहले चिन्मय मिशन के संबंध में उसको कोई आइडिया नहीं था। 15 दिन के अंदर रिजाइन करके वो लड़का वहां पहुंच गया, 2 साल का कोर्स किया उसने। अब ऐसे लड़कों को अगर आप पूछो भाई अब क्यों छोड़ के आ गए, आप जर्मनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे, आप कहोगे आश्चर्य है। हम लोग यहां आए कोर्स करने के बाद में, बहुतों का बहुत कुछ विचार रहा होगा, पता नहीं कहां से आ गए ये लोग, इनके बच्चे देखते नहीं होंगे, बुड्ढे बुड्ढी कहां से आ गए। कभी सोचते हैं कि ये तो भीख मांगते हैं, शायद इनके घर में खाने पीने का कुछ नहीं रह गया, आप इनके पास कोई देखता नहीं है ये इनको। आश्चर्य, सब कुछ आश्चर्य है। देखो वक्ता श्रोता दोनों ही आश्चर्य है। ज्ञान मुक्ति देगा, नित्य सुख देगा, फिर भी लोग नहीं आते हैं, आश्चर्य है। देखो हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, और हमारा शास्त्र कहता है कि तुमको नित्य सुख देगा ये ज्ञान, आओ, फिर भी लोग नहीं आते हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं है? शंकराचार्य जी कहते हैं, अथवा जो इस आत्म तत्व को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है। अभिप्राय है कि अनेक सहस्त्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है जिसको समझ में आता है, इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है। तो आत्मा दुर्बोध क्यों है? भगवान ने एक श्लोक के अंदर बता दिया, आश्चर्य है। जो देखता है आत्मा के बारे में आश्चर्य है। देखो, हमको देख के भी दिखाई नहीं पड़ता, विशेष चीजों का ध्यान होता है। ये गिलास है, ये प्लेट है, ये टेबल है, ये किताब है, ये लाइट है, वो पेंटिंग है, ये सब विशेष विशेष चीजें हैं। मगर इस सारी जगह में जो सामान्य वस्तु है हम सब मिस कर जाते हैं। क्या है वो सामान्य वस्तु? प्रकाश। ये प्रकाश की तरह ही आत्मा सब जगह है, सब जगह है, इसको हम सब मिस कर जाते हैं और विशेष विशेष को पकड़ लेते हैं। विशेष क्या है? जो जो चीज विशेष रूप ने ले लिया वो विशेष। उसी तरह भीतर में हर वृत्ति विशेष है। एक वृत्ति किताब की आई, एक वृत्ति खाने की आई, एक वृत्ति सोने की आई, ये सब वृत्तियां विशेष हैं। मगर इन वृत्तियों को प्रकाशक जो है वो सामान्य है। सामान्य को हम भूल जाते हैं, सामान्य को हम नहीं देख पाते। जैसे हमने इस रोशनी को नहीं देख पाए, उसी तरह हर वृत्ति के पीछे जो है प्रकाशक जो है उसको हम मिस कर जाते हैं। और विशेष विशेष को देख लेते हैं। जुगन मुक्त भी कहता है कि आश्चर्य, मैंने समझ लिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार मैं समझ पाऊंगा। बहुत अच्छा। ऐसा ही एक मंत्र कठोपनिषद में है, एकदम मिलता जुलता जो है मंत्र कठोपनिषद। अब ये बताओ किसने कहां से लिया? उपनिषद ने गीता से लिया कि गीता ने उपनिषद से लिया? उपनिषद से गीता ने लिया। क्या मंत्र है? श्रवणापि बहुर्भ्यो न लभ्यः, श्रवणन्तोपि बहवो युम्न विद्यु, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। श्रवणापि बहुर्भ्यो न लभ्यः, बोलो बहुतों को सुनने को नहीं मिलता है। एक तो गुरु महा आश्चर्य है क्योंकि बहुत कम है, तो लोगों को सुनने को नहीं मिलता। पहली बात तो बहुतों को नहीं मिलता है। श्रवणन्तो अपि बहवो यमन विद्युः, बोले जिनको सुनने को मिलता है उनको समझ में नहीं आता है। अर्जुन भी ऐसा ही था, आप अपने आप को जो है ये नहीं समझना, अर्जुन को भी नहीं समझ में आया था, उसके भी ऊपर से चला गया। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, वक्ता आश्चर्य है कि मिलने पर वो पढ़ा देगा। अगर वक्ता आपको ठीक से मिल गया तो आपको पढ़ा देगा। आश्चर्य हो गया था कुशलानुशिष्ट है, और शिष्य भी आश्चर्य जब जान लेता है तो भी आश्चर्य है। तो शिष्य भी आश्चर्य, आत्मा दुर्भिज्ञ है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो भी आश्चर्य, अगर नहीं समझ में आया एक श्लोक और देख लेने से अच्छा होता। जब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं।
देहि नित्यम अबोध्य अवध्योयम्,
देहि नित्यम अवध्योयम्,
देहे सर्वस्य भारत,
देहे सर्वस्य भारत,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि,
न त्वं शोचितुमर्हसि,
न त्वं शोचितुमर्हसि।
देहि नित्यमवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
देही, देह में रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, वो कैसा है? नित्य है। आत्मा नित्य है, भगवान ने आगे कई श्लोक में बताया कि आत्मा नित्य है। अबद्योयम, अबद्य इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देहे सर्वस्य भारत है, हर देह के अंदर सर्वस्य, जो भी देह हो, चाहे वो प्लांट का हो देह, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो, या एनिमल में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, मनुष्य में हो, जिसमें भी हो, उस देही को हम नष्ट नहीं कर सकते। देह को नष्ट कर सकते हैं, मत देही को नष्ट नहीं कर सकते। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं, तस्मा सर्वानि भूतानि न तम सोचो तुम हर्षि। भारत, तुमको जो है शोक नहीं करना चाहिए। यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीर में स्थित है। स्थावर जंगम, जंगम में तो समझ में आता है कि सब मूविंग है, चलते हैं, इसमें आत्मा है, मगर स्थावर के अंदर भी वो है। कैसे है? एग्जिस्टेंस के रूप में है, एग्जिस्टेंस के रूप में है, तो भी अवयव रहित है। दो कारण उन्होंने बताया क्यों उसको हम नाश नहीं कर सकते। अवयव रहित, पार्टलेस, पार्ट नहीं है उसके अंदर, कोई अंग नहीं है। हमारे देह में अंग है, इनको हम काट सकते हैं, उनको नाश कर सकते हैं, मगर आत्मा के अंदर अवयव नहीं है। और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में अबद्ध ही है, वो सर्वत्र है, इनफाइनाइट है, इस वास्ते हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी सारी दुनिया के सारे प्राणियों के शरीर को नाश कर देने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। सारी सृष्टि भी अगर नष्ट हो जाए तो ये आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए भीष्म आदि सब प्राणियों के उद्देश्य तुझे शोक करना उचित नहीं है। तुमको शोक नहीं अर्जुन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भीष्म के हो या जिसका भी हो, ये जाने वाले हैं। भारत, भारत का मतलब क्या होता है? भा मीन्स प्रकाश, रत मीन्स जो उसमें लगा हो, प्रकाश मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में लगा हो। अर्जुन ज्ञान में लगा हुआ है, इसलिए उसको भारत कहते हैं। जो भरत वंश में जन्म लिया उसको भारत कहते हैं। जो भारत वंश में जन्म लिया है हम भारतीय कहते हैं, मगर भारत उसके लिए भी है। जो राष्ट्र ज्ञान की दिशा दिखाता है वो भी भारत कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता, सारे देही नित्य हैं। तुमको क्या करना चाहिए अर्जुन? बोले देही और देह का विवेक करना चाहिए। देही नित्य है, देही आत्मा है, और देह जो है वो अनात्मा है। तो भगवान ने कह दिया आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं, सेकंड लेवल जीव की शोक नहीं, तृतीय शरीर के लेवल से शोक नहीं। अर्जुन तुमको अब अपना कर्म चुनना होगा, युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। युद्ध करोगे तो उसका फल एक है, युद्ध नहीं करोगे तो उसका फल एक है। और तुम्हारी विचार ठीक नहीं है, तुम्हारा विचार विरोचन की तरह है। क्यों विरोचन की तरह है? विरोचन ये जान के गया था शरीर आत्मा है। अर्जुन तुम्हारी बुद्धि यही सोच रही है कि ये जितने भी शरीर मारे जाएंगे इन सब की आत्मा का नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा सोच यहीं तक है। ग्यारहवें श्लोक के अंदर में भगवान ने कहा था प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम प्रज्ञावान की तरह सब ये सब आर्गुमेंट दे रहे हो। उसने दो तीन आर्गुमेंट दी थी। क्या क्या आर्गुमेंट थी उसकी? कि ये लोग जो हैं, ये हमारे सब जो है एल्डर्स हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको पूजा करनी चाहिए। भगवान आप हमको मारने को कहते हो? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये आचार्य हैं हमारे। मगर आपको बता दें, द्रोणाचार्य अपरा विद्या के आचार्य थे, धनुर्विद्या के थे, ब्रह्म विद्या के नहीं थे, ये याद रखिएगा। फिर भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य को वही स्थान दिया जो गुरु को स्थान दिया जाता है। उसके बाद में उसने ये भी दलील दी, अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मार दें तो ये महानुभवी हैं, महानुभाव, इनका अनुभव बहुत है, और ये अगर मारे गए तो इसके ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कलंक लगेगा, राष्ट्र चलाएगा कौन? अगर मैं जीत भी गया तो जब भी मैं भोग करूंगा तो हमको लगेगा कि ये उनके खून से सना हुआ ये राष्ट्र मैं भोग कर रहा हूं। मैं जो कामना जो करूंगा, जो भी सुख पाऊंगा, वो बराबर मेरे को पीछे से ये कचोटता रहेगा बराबर, और वो हमको धर्म नहीं करने देगा और मोक्ष नहीं मिलेगा। राज्य जीतने से अर्थ मिल जाएगा, कामना की पूर्ति होगी, मगर धर्म और मोक्ष ये दोनों ही नहीं मिलेंगे। अर्जुन तो उस टाइम में मोहित था, उसने इतनी दूर तक कह दिया कि भगवान हम दोनों पाप करने जा रहे हैं, आपको याद है? उसके इस दलील का भगवान ने 11 से लेके 30वें श्लोक तक उसके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और भगवान ने आत्मज्ञान से शुरू किया था, क्योंकि उसने केवल एक चीज जो जानना चाहता था कि मेरा धर्म क्या है। तो भगवान ने आत्मज्ञान से शुरू किया, आत्मज्ञान होने से मन शांत होगा, फिर धर्म की बात होगी। सीधा अगर धर्म की बात अगर भगवान करते तो उसका मन कभी, उसके मन के पीछे में ये लगा रहता है कि पता नहीं भगवान जोर से हमसे ये करवा रहे हैं। इसलिए भगवान पहले आत्मज्ञान दिए और उसके बाद में धर्म की बात करेंगे। ओ Om Shanti.